ॐ शांति ॐ शांति। प्रायः हर मुरली में रोज रोज बाबा हम बच्चों को इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। भिन्न भिन्न रूप से बाबा हमें इस कलयुगी दुनिया से उपराम करते जाते हैं। तो आज बाबा ने कैसे हमें उपराम किया है इस कलयुगी दुनिया से, वो मुरली द्वारा सुनेंगे। बाबा ने एक बहुत कड़ा शब्द कहा है कि ये दुनिया अभी कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान से कोई दिल लगाता है क्या? कब्रिस्तान से तो कोई दिल नहीं लगाता है, कोई नहीं कब्रिस्तान को पसंद करेगा। सोचते जल्दी जल्दी यहां से जाए। शमशान घाट में भी जाते हैं, जो अर्थी का अंतिम संस्कार करना होता है वो करने के बाद तुरंत आ जाते हैं, रुकते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया भी कब्रिस्तान होनी है, इससे मुंह मत रखो। और गीता में भी इसका बहुत सुंदर वर्णन है ना, अर्जुन जब तैयार नहीं था तीर कमान चलाने लिए, तो भगवान ने उनको क्या दिखाया? सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं, जैसे कब्रिस्तान दिखाया उनको। ये तेरे मामा चाचा काका गुरु गुसाई ये सब जिनको तुम इतना ऊंचा मानते हो, ये सब मरे पड़े हैं, इन सब की मौत निश्चित है, क्योंकि वो सब कौरवों के तरफ ही थे, तो इसीलिए इनकी मौत निश्चित है, ये मरे हुए देखो। तो अर्जुन को तो शौक लगा, ये सब मर जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा ये सब मरे पड़े। तो हर मुरली में बाबा भिन्न भिन्न रूप से वैराग्य दिलाते। बेहद के वैरागी को, बेहद के सन्यासी को, बाबा कहते तुम बच्चे ही हो। तो ये देखना है अपने अंदर कि हमें कितना इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य है। अगर नहीं है वैराग्य, बुद्धि जाती है, तो समझो कि फिर अंत में पास कैसे होंगे, क्योंकि अंत में सिवाय एक बाप की याद के और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो वो अभ्यास बाबा हमें हर मुरली में सिखाते हैं। आज बाबा ने ये भी कहा कि मैं धोबी बन के आता हूँ, सबके जो मैले कपड़े हैं मैं धोता हूँ। शरीर रूपी मैला कपड़ा नहीं, आत्मा रूपी मैला कपड़ा धोता हूँ, तुम्हें स्वच्छ बनाता हूँ। तुम्हारा तो बनाता हूँ, लेकिन सबका बनाता हूँ, सारी दुनिया का, क्योंकि प्रकृति को ही सत्व प्रधान बनाता हूँ। तो इसीलिए सब कुछ पावन शुद्ध बनाता हूँ। धोबी का काम क्या होता है? धोबी का काम होता है मैले कपड़ों को साफ करना। तो पहले यहाँ ये अपना जो सुखधाम में लॉन्ड्री है वो सब नहीं था, है ना? मशीनें अभी आ गई है कपड़े धोने की, उस समय वो भी कुछ नहीं था। जब मुझे याद है हमने भी वो देखा, तो वहाँ जहाँ ये जनरेटर रूम है तो वहाँ पर धोबी घाट था। एकदम बट्ठे में कपड़े डालते थे, इतने गरम गरम पानी में बट्ठे में कपड़े डालते थे मैले कपड़े, और फिर भाई लोग कैसे उसको धोते थे, और धोने के लिए उसको पकड़ करके वो सोती नहीं लगाते थे, लेकिन कपड़े छू 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 करते थे, आवाज होता है ना कपड़ों को सटते हैं, तो वो कपड़ों को सटते थे तो आवाज आता था छू। तो बाबा कहते हैं कि देखो मैं भी क्या करता हूँ छू मंत्र से। कौन सा है छू मंत्र? हाँ, कौन सा है छू मंत्र? मन मना भव। इस मन मना भव के छू मंत्र कहो या शिव मंत्र कहो, उससे मैं मैले कपड़े धोता हूँ। तो मैं कितना बड़ा महान धोबी हूँ, वो धोबी कितने कपड़े धोएगा, और मैं तो सारी दुनिया के कपड़े धोता हूँ। और सब जो भी ये शरीर है वो सब बाबा कहते सरसों मिसल पीस जाएंगे। सरसों को पीसते थे कैसे धानी में, तो किस प्रकार से सब पीस जाते हैं खत्म, वो सरसों का रूपन खत्म हो जाता है। और बाबा कहते मैं शुद्ध आत्माओं को वापस ले जाऊंगा, लेकिन कोई तो योग से शुद्ध होंगे, कोई फिर सजा से शुद्ध होंगे, परंतु सबको ले जाऊंगा। तो बाबा ये बार बार हमें याद दिलाते कि कैसे मच्छरों सदृश जाएंगे। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया विराट रूप का, उसमें दिखा इतना बड़ा मुंह और उसमें सब जैसे मच्छरों सदृश उस बड़े मुंह में जा रहे हैं और सब स्वाहा हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब अंत की निशानियां हैं, परंतु तुम बच्चों को डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं हमारे लिए नई दुनिया तैयार हो रही है। पुराना घर जब हो जाता है तो नया घर तैयार होता है, तो पुराने घर से अपने आप दिल टूट जाती है। तो तुम्हारी दिल अब इस पुरानी दुनिया से टूट जानी चाहिए, है ना? तो सबकी दिल टूटी हुई है, जो समझते हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल टूटी हुई है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई। आपकी नहीं टूटी हुई है? आपको आपको क्या? हाँ, हाथ उठाओ, नहीं टूटी हुई है। आगे जो बैठी है, पीछे वालों को देखते आगे वाले नहीं उठाते हैं, आगे वालों की नहीं टूटी है। बाबा हमेशा पूछते थे आगे वाले नहीं उठा रहे हैं हाथ, समझते हमारी तो है ही है, लेकिन सबकी हो जरूरी है ये। इसलिए ममत्व मिटाना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कई बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो, बाबा कहते कृपा मेरी श्रीमत है, तो मेरी श्रीमत पर चलो, यही मेरी कृपा है। बाकी ऐसे कृपा करूं तो सारे राजा रानी बन जाए, इसलिए मेरी श्रीमती मेरी कृपा है। तो आज की बाबा की मुरली इसी पर है, सुनते हैं बाबा के महावाग्य। आज 27 फरवरी 2026 है। मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। कहाँ कब्रिस्तान जिसमें सब मुर्दे पड़े हुए हैं, एकदम मरे हुए सब, और कहाँ परिस्तान जहाँ परियों माफिक उड़ते रहेंगे। तो कितना अंतर हो जाएगा। तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए, पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। प्रश्न है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, वंडरफुल सर्वेंट है, सेवक है ना, कैसे कैसे वंडरफुल सर्वेंट है? उत्तर, बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छी छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ, सेकंड में। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। शरीरों को शुद्ध नहीं करने आते, आत्माओं को शुद्ध किया तो शरीर शुद्ध मिलेगा। तो आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। जादूगर बन के कैसे छू मंत्र मनमना भाव के से कैसे सब वस्त्रों को साफ करता है सेकंड में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। दुनिया में तो मुक्ति में जाने लिए पुरुषार्थ करते, बाबा कहते तुमको शांति धाम मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, वहां तो सब जाएंगे, चाहे प्यार से जाएंगे चाहे मार से जाएंगे, जाना सबको है, तो उसके लिए पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ किसके लिए है? नई दुनिया में जाने लिए। तो बाबा कहते हैं शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। बस आत्मा शांत स्वरूप हो या अनुभव करे तो जैसे शांति धाम में पहुंच गई। शांति धाम में रहने वाली है, हाँ थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है इस शरीर में भी आत्मा थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है मैं कर्म इंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। थक जाते हैं ना, फिर विश्राम करते हैं, थक गए तो बस सब काम वही छोड़ेंगे, बस थोड़ा आराम करना है। तो जब बाबा कहते हैं मैं कर्म इंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कितना समय? ज्यादा समय तो नहीं, क्योंकि आत्मा तो शरीर में है, तो परंतु कर्म तो करना ही है। थोड़े समय के लिए एकदम शांत हो जाए वो और बात है, लेकिन फिर कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है हम शांति देश की रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बनी हूँ। आत्मा टॉकी बनती है शरीर में आने से। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ पांच तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से क्या होता है? सोने में खाद पड़ने से सोना बाबा कई बार कहते हैं मूल माँ बन जाता है, आज बाबा कहते हैं सोना पतित बन जाता है। खाद पड़ गई चांदी की, थोड़ा पतित बना, फिर तांबे की, फिर लोहे की, तो पूरा काला पड़ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं खाद पड़ने से सोने में तो सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। वो जो हठ योग करते हैं उनसे कोई आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। चलो शरीर तंदुरुस्त बनता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि उस योग से नहीं होती है। वो योग अग्नि नहीं है जिसमें आत्मा तपे और वो शुद्ध हो जाए, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। योग अग्नि ये है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार क्या होता है? ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। कोई सोचे मैं आधे से वापस चला जाऊं, एकदम पतित तमो प्रधान नहीं बनूं, बाबा कहते तो ये हो ही नहीं सकता, सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो जो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है ये अनेक वैरायटी धर्मों का जाड़ है। वो अब तमो प्रधान पतित है, जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में है देवताएं और कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है, दोनों अलग अलग युगों में है, तो उनकी लड़ाई कैसे लगेगी? असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसुरी पांच विकारों पर योग बल से जीत पाते हो, बाकी कोई हिंसक लड़ाई की तो बात ही नहीं है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो। कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, किसको थप्पड़ मारना ये भी तो हिंसा है ना, जोर से थप्पड़ मारते लगता तो है ना, तो ये भी तो बहुत बड़ी हिंसा है। तो कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। देखो बाबा कहते इतने तक हिंसा नहीं, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो, काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। तो बाप कहते ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है, विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा तो गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न हो। तो आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते नहीं है, तब शिव बाबा को नहीं बुलाएंगे पतित पावन आओ। जब पावन आत्मा है तो उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धूम लगाते हैं, हे पतित पावन हाँ, फिर कहेंगे पतित पावन सीताराम। अब बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं है। अरे भगवान की दुनिया और इतनी पतित कैसे बन गई? तो बाबा कहते इसमें किसी का दोष नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें भी किसका दोष नहीं है, ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊं, जब तक शिव बाबा आए, बाबा कहते इनों को अपना पाठ बजाना है। जो पतित लोग हैं उनको अपना पाठ बजाना है, ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो ये है बेहद का वैराग्य, उनों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है, अपने आप हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है पुराने घर से वैराग्य आने में। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ, अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रहकर हम नई दुनिया बना रहे हैं, ऐसे नहीं वहां जाकर के नई दुनिया बनाएंगे, पुरानी दुनिया में रहकर नई दुनिया बनाएंगे। यही दिल्ली क्या थी? बाबा कहते यही दिल्ली जमुना नदी आदि होगी, वही दिल्ली वही जमुना नदी होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब है दंत कथाएं। बहुत कथाएं भी बताते हैं ना पांडवों की, कहाँ कहाँ गए कहाँ कहाँ रहे, वो बाबा कहते हैं ये सब दंत कथाएं हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर ये बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो फिर भी करना होगा, सब वही रिपीट होगा जो कलप पहले हुआ है, फिर करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, सबसे फर्स्ट क्लास मंदिर शिव का कौन सा बनाया? हाँ सोमनाथ का मंदिर। तो फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो उसको, हाँ फिर उसके बाद क्या होता है, फिर कितने मंदिर बनाने लगते हो। तो अनेक मंदिर बनाए, अनेक देवताओं के मंदिर बनाए, तो फिर बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, वो अव्यभिचारी भक्ति, फिर अनेकों की भक्ति करने लगे, अनेकों के मंदिर बनाने लगे, तो उसको कहेंगे व्यभिचारी भक्ति। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, ये है ही हाँ, अभी तो वो अव्यभिचारी भक्ति एक शिव की, और ये क्या है बाबा भेंट कर रहे हैं, ये है अव्यभिचारी ज्ञान। अब अव्यभिचारी ज्ञान कैसे, क्योंकि हम एक का एक से ही सुनते हैं, अनेकों से नहीं सुनते, हम एक से ही सुनते हैं, तो इसीलिए कहेंगे अव्यभिचारी ज्ञान। ये है अव्यभिचारी ज्ञान, एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो, तुम बहुत सुखी रहते हो, देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है, देवता स्वर्ग ये नाम लेने से ही बाबा कहते हैं मुख मीठा हो जाता है, तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो, तो बाप कहते हैं और कोई से नहीं सुनो। अव्यभिचारी ज्ञान है, जो एक सुनाते हैं वो एक से ही सुनो, एक से ही और के और कोई से न सुनो, ये है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा, लेकिन लेने वाले बाबा तो सबको समान देते, लेकिन लेते को कैसे हैं, लेने वाले फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार लेते हैं। बाबा देता सबको है, पर लेने वाले नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार लेते हैं। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है, कहते हैं बच्चे मुझे तुमको ज्ञान देना है, मुझे तुम बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा स्थायी शरीर तो है नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, शिव बाबा ने प्रवेश किया और झट बाबा कहते ज्ञान देना शुरू कर दिया, तो जब झट से देना शुरू किया शिव बाबा ने ज्ञान, जो ब्रह्मा बाबा को भी समझ में नहीं आया ना कि ये कौन मेरे मुख से बोल रहा है, शिव बाबा ज्ञान सुनाने लगे, ब्रह्मा बाबा कहे मैं तो नहीं सुना रहा हूँ, मेरी बुद्धि तो नहीं चल रही, ये कौन ज्ञान सुना रहा है, तो इसलिए बाबा कहते हैं झट से गीता ज्ञान देना शुरू कर दिया। ये रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं, पानी की तो बात ही नहीं है, पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे, पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ी पावन बनेंगे, पावन बनना है तो ज्ञान चाहिए ना, पानी से थोड़ी आत्मा पावन बनेगी, पानी से थोड़ी पावन बनेंगे, नदियां तो सारी दुनिया में है ही है, हर दुनिया हर देश में नदियां कितनी है, खाली भारत में थोड़ी नदियां हैं, सब देशों में जाओ कहां वो सब इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो सारी दुनिया में तो है ही सब नदियां, ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं, यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, खास गंगा जल हरिद्वार से मंगा के रखते हैं, एक वो उनकी छोटी सी मटकी होती है, मटकी वैसे तो पित्तल की होती है या तांबे की होती है, तो उसमें गंगा जल रखते हैं, और जब कोई शरीर छोड़ने पर होता है तो उसी समय उनके मुख में डालते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते हैं ये जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा, ये गंगा जल उनके मुख में पड़ेगा तो वो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं, हाँ गौमुख है ना माउंट आबू में गए हैं, जो गए हैं गौमुख हाथ उठाओ, देखो थोड़े गई है, सेवाधारी माताएं नहीं गई है कभी गौमुख, 700 सीढ़ियां उतर के जाना है तो गौमुख है या माउंट आबू में 24 घंटा पानी आता है, चाहे कितना भी सूखा हो माउंट आबू में लेकिन उसमें से निकलता है पानी, और उस गौमुख को गौमुख से जो पानी निकलता है उसको गंगा जल समझ कर पीते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी गौमुख पर जाते हैं, वास्तव में गौमुख कौन है? बाबा कहते हैं वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो, सब गौमुख हो, भाई भी गौमुख है, जिसके मुख से ज्ञान निकलता है ना वो गौमुख है। सुना भाई, आप ये नहीं समझो हम गौमुख नहीं है, तो ज्ञान मुख से निकलता है तो सब गौमुख है। तो वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, गाय से तो दूध मिलेगा, गाय से कोई गंगा जल थोड़ी मिलेगा। गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं, ये अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वो फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, जो दृश्य बीता इस कल्प में फिर दोबारा उसी कल्प में नहीं आएगा, फिर 5000 वर्ष के बाद वही दृश्य होगा, वही रिपीट होगा, ये फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। ये बाप बैठ समझाते हैं जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं, आगे तुम नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है, रावण को जलाना माना बेहद का दशहरा होना। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना, ये सारी जो पृथ्वी है वो लंका है, रावण कोई हद में नहीं रहता है, केवल एक बेट या श्रीलंका में कोई ऐसे रावण इतनी एक बेट पर या आइलैंड पर नहीं रहता है, रावण का राज्य तो सारी सृष्टि में है, सारी दुनिया में रावण का राज्य है। इस समय भक्ति भी आधा कल्प चलती है, तो पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है, तो दशहरा रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार है, सब संगम युग के त्योहार है। शिव जयंती के बाद होती है कौन सी जयंती? श्री कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है, आज कंसपुरी में है और कल कृष्णपुरी में होंगे। श्री कृष्ण थोड़ी यहाँ हो सकता है, कंसपुरी में श्री कृष्ण नहीं हो सकता है, श्री कृष्ण थोड़ी यहाँ हो सकता है। श्री कृष्ण जन्म लेते ही है सतयुग में, वो है फर्स्ट प्रिंस, स्कूल में पढ़ने जाता है, दाना सांदीपनी आश्रम दिखाते हैं उज्जैन में, वहाँ स्टैचूज बने हुए हैं, वो कैसे उनका गुरु और छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहा है, श्री कृष्ण भी एक स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है। तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है, बाकी ये रास लीला आदि वो तो आपस में खुशी मनाते होंगे, जो रास लीला दिखाते हैं ना महारास, श्री कृष्ण की एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण बहुत रास दिखाते, बाबा कहते ये तो आपस में खुशी मनाते होंगे, बाकी श्री कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए ये हो कैसे सकता है। सारी महिमा तो एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, अब बाबा देखो क्या कहते हैं, तुम बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहते हो, आप लोग जो भी कहते हो सब राइट कहते हो, परंतु वो और किसी को सुना नहीं सकेगा, क्यों? अगर राइट कहते हो तो वो भी तो दूसरे किसी को सुना सकता है ना, लेकिन वो सुना नहीं सकता। क्यों नहीं सुनाएगा? क्यों नहीं सुनाएगा? अगर सुनाएगा भी ब्रह्मा कुमारियों की बात, तो बाबा कहते उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, नहीं सुनेगा। अगर वो भी ज्ञान देना शुरू कर दे कोई ऐसा वीआईपी, तो उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? वो कहेंगे अरे ये तो बीके बन गया, ये तो बीके बन गया, और कहेंगे इनको तो जादू लग गया, जादू लग गया, ये तो बीके बन गया ये ज्ञान सुनाना। लेकिन मैंने देखा हमारी राष्ट्रपति बाबा का पूरा ज्ञान देती है। परसों का नागपुर में प्रोग्राम था, कितना सुंदर सत्यु का वर्णन किया उन्होंने, जहाँ शेर गाय घाट पर पानी पीते हैं, वो दुनिया। तो वो दुनिया में हमें वो बनानी है एकता और विश्वास। वो उस टॉपिक पर एकता और विश्वास से मिल करके, ये नहीं कहा कि कलयुग विनाश होगा सत्यु गाएगा, लेकिन ये बनाना है। तो जहाँ शेर गाय घाट पर पानी पिए, मनुष्यों का इतना प्यार है तो जानवरों का कितना प्यार है, तो ये सिद्ध करता है कि कितना प्यार है। तो ऐसी दुनिया बनानी है, तो उसने तो इनडायरेक्टली कहा, लेकिन बाबा का ज्ञान इतना स्पष्ट देती है वो। तो बाबा कहते हैं तो वो कहेंगे बीके बना, और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया। राष्ट्रपति के लिए तो कई कहते हैं ये तो है ही बीके। बीके का नाम सुना बस समझते ये जादू करती होगी, बीके बना माना जादू करते होंगे। थोड़ा किसको ज्ञान दो तो कह देते हैं ये बीके जादू लगाते हैं। बस ये तो सिवाय अपने दादा के और किसको मानती नहीं है, भक्ति आदि कुछ भी नहीं करती है। उस समय तो बहुत ही ज्यादा था ना, क्योंकि कहेंगे ये तो इनका जो दादा है ना, इनको ही भगवान मानती है। कितना भी उनको समझा हम इनको भगवान नहीं मानते हैं, ये भगवान भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, कोई देवता भी नहीं है, ये तो मनुष्य है, लेकिन ये हमारा अलौकिक पिता है। इनसे हमने, शिव बाबा ने इनसे हमें नया जन्म दिया है। तो बाबा कहते वो समझते नहीं, तो बस ये कहेंगे ये तो सिवाय अपने दादा के और किसको मानती नहीं, भक्ति आदि कुछ भी करती नहीं। बाबा तो कहते हैं किसको भी मना नहीं करना है कि भक्ति नहीं करो, किसको भी मना नहीं करना है, अगर वो कर रहा है भले करे, मना नहीं करना है, आपे ही छूट जाएगी। जैसे ज्ञान में परिपक्व होगा वो आपे ही छूट जाएगी भक्ति। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर भी हंगामा होता है। विकार भी छोड़ते हो, भक्ति भी छोड़ते हो, इस पर भी हंगामा होता है। बाबा ने कहा मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। कल बाबा ने कहा ना रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो बाबा कहते हैं इसमें विघ्न पड़ते हैं इस यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के। ये है शिव बाबा का देहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। तो गाया भी हुआ है ज्ञान यज्ञ से क्या निकला, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो, और ये ब्रह्मा कुमारियां कहती है विनाश हो। तो बाप समझाते हैं, अभी तो खुद ही कह रही है विनाश होगा, कलयुग जाएगा सत्युग आएगा, ये कितने कहते हैं, केवल हम ही नहीं कहते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलमिटीज भी आएगी, विनाश तो होना ही है, होना ही है, अवश्यम भावी, अवश्य होना ही है। सरसों माफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे। बाबा को भी बड़ा मजा आता है ये कहने में, कि सब मनुष्य कैसे जाएंगे, सरसों माफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे। गीता में भी है कैसे सरसों मिसल पीस कर फिर ये आत्माएं कैसे मेरे पास आ रही है, बाकी आत्माएं बच जाएगी, ये शरीर तो पीस करके यही खत्म हो जाएंगे ना, और ये जमीन जो अभी कलराठी बंजर बन गई है वो उपजाऊ बन जाएगी शरीरों के खून से, ऐसे ही कहेंगे ना। खून डालते हैं खास कई जगह खेत में, अंगूर की खेत में खास कहते हैं, उससे बहुत अच्छा बनता है, तो ये तो सारी धरती उपजाऊ हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएगी। ये तो कोई भी समझ सकते हैं क्या, कि आत्मा तो अविनाशी है, अभी ये बेहद की होली का होनी है, बेहद की होली का 3 तारीख को वैसे होली है और 4 ये होली का है और 4 को दुधिया इस प्रकार है, लेकिन 3 तारीख को या 4 तारीख को दोनों ही, तो उस दिन चंद्र ग्रहण है, बहुत भयंकर चंद्र ग्रहण है, अभी पता नहीं भारत में दिखेगा या नहीं, और वो कहते हैं रेड मून, लाल चंद्रमा वो दिखेगा, क्योंकि चंद्र वो पूनम की रात, पूनम में ही तो चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो इसीलिए वो कहते हैं रेड मून, लाल चंद्रमा दिखेगा। तो बाबा कहते हैं बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी, आत्मा तो अविनाशी है, तभी बेहद की होली का होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं, क्यों करते हैं हवन, शुद्धता के लिए। ये सब है जिस्मानी बातें, अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है विनाश, क्योंकि स्थापना पूरी नहीं हुई है, इसलिए बाबा कहते हैं विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले हमेशा बोलो स्थापना, फिर बोलो विनाश, हाँ ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश, पर पहले स्थापना फिर पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी, जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर है, हाँ जहाँ जाओ ये सब देवियों के मंदिर जो भी है सब है, तो वही जगत अम्बा के मंदिर, जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर है, कितने मेले लगते हैं। तुम हो, अब तुम कौन हो, जगत अम्बा के मंदिर तो हैं, तो तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, मास्टर तो है ना जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर बनेंगे राज राजेश्वरी, तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप माला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, अम्बा माँ से सब कुछ मिल जाता है, आयुष्वान भव पुत्रवान भव, क्योंकि ये सब चीजें फिर अम्बा से मांगते हैं, धन केवल लक्ष्मी से मांगते हैं, धन फिर अम्बा से नहीं मांगते हैं, लेकिन बाकी सब मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, हाँ आयु मांगते हैं, सब मांगेंगे। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है, तो बाप कहते जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो, मनुष्य तो है, अब योगेश्वर का ऑपोजिट क्या है, भोगेश्वर। आज बाबा ने कहा है सारी दुनिया है भोगेश्वर, और तुम बनते हो योगेश्वर के बच्चे, मास्टर योगेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वर, मनुष्य तो है भोगेश्वर। तो कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है भोगेश्वरों के लिए, विकारी मूत पलीती कप्पड़ धोए, तो भगवान आकर के ऐसे विकारी ऊत पलीती भोगेश्वर उनके कपड़े धोते हैं। तो बाप कहते हैं, मुझे धोबी भी कहते हैं, मैं सब आत्माओं को आकर के साफ करता हूँ। तो मैं करता साफ आत्माओं को हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा, क्योंकि प्रकृति भी शुद्ध हो जाएगी तो फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। तो बाप कहते हैं, मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ, छू मंत्र से सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाते हैं, बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, इसीलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, जादूगर। जादू छू किया और कुछ क्या से क्या बना देता, छू मंत्र है ना। तो सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, सबका भला हो जाता है। तो तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन आया हूँ, तुमने बुलाया ही है। क्यों बुलाया शिव बाबा को, कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे, तुमने पुकारा और मैं आया हूँ तुम्हारा सर्वेंट बनकर। देखो, बच्चों ने पुकारा और बाप सर्वेंट बनकर के आया। जब तुम बहुत पतित बने हो तब ही जोर से चिल्लाते हो, हे पतित पावन आओ, जोर से चिल्लाते हो जब तुम बहुत पतित बनते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ये मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो। मन मना भव का मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ ही है, मन मना भव का अर्थ भी है। क्या है अर्थ, मन को मेरे में लगाओ, तो मन मना भव। फिर है मध्याजी भव, तो मध्याजी भव का अर्थ क्या है, बाप को मनमना भव का अर्थ है मुझे याद करो, और मध्याजी भव का अर्थ है विष्णुपुरी के तुम मालिक बनेंगे। अगर मुझे याद करेंगे तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये है मनमना भव, मध्याजी भव। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने, रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। तो जब रावणपुरी कहे तो फिर कहेंगे रामपुरी, या कहेंगे रावणपुरी के बाद फिर है, फिर रावणपुरी के बाद फिर है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। तो ये सब बाबा कहते, कितनी सहज बातें हैं। बाप कहते, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। क्या हिम्मत करनी चाहिए, कि याद के बल से ही पाप कटे, सजा न खानी पड़े, इतनी हिम्मत दिखानी है। वो तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। कोई भी सन्यासी शरीर छोड़ता है तो उनके लिए ये नहीं कहते स्वर्गवासी हुआ, वो ये भी नहीं कहते मर गया, क्या कहेंगे ब्रह्म लीन हो गया, ये शब्द यूज करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान, वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता। ब्रह्म से योग लगाने से पावन भी नहीं बनेंगे। कैसे पावन बनेंगे? पावन तो पति पावन ही बनाएगा ना, ब्रह्म तो घर है। अभी घर से योग लगाया, इस घर में रहने वाला जो पतित पावन है उससे तो योग लगाया नहीं, जानते ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते पावन नहीं बनेंगे। एक भी जा न सके, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तो बाप आकर के सच बतलाते हैं, सच खंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं, सच खंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी ये है संगम युग, इसमें तुम, इस संगम युग में तुम क्या बनते हो? तुम उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम बनते हो, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ये है बेहद की बात, हद की बात नहीं। कौड़ी से हीरा, कोई वो स्थूल हीरा थोड़ी बन जाएंगे कौड़ी से, लेकिन बेहद की बात है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ये है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य है देवताएं। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो, तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं। फिर ये तुम भूलते क्यों हो? ऊंचे ते ऊंचा बाप तुमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देते हैं स्वर्ग का, फिर तुम भूलते क्यों हो? तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो बच्चे फिर क्या कहते हैं? बाबा आप कृपा करो, आप कृपा करो कि हम भूले नहीं, आप कृपा करो कि हम भूले नहीं। तो बाबा कहते ये कैसे हो सकता है? अर्जुन को भी यही भगवान ने कहा तुम लड़ो, मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो बस आरथी बनूंगा तुम्हारा, पर लड़ना तो तुमको है क्योंकि राज्य तो तुमको पाना है, भगवान को थोड़ी राज्य पाना है। तो बाबा कहते ये कैसे हो सकता है कि कृपा करो? बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, तो इस राय पर चलो ना। तो ये राय बाबा देते हैं, श्रीमत देते हैं। तो बाबा कहते इस पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करो? देखो दुनिया में तो वो संत जहाँ जाएंगे आशीर्वाद करो तो आशीर्वाद करते हैं, आयुष्वान भव पुत्रवान भव, न जाने कितने आशीर्वाद करते हैं। बाबा कहते मैं आशीर्वाद करता ही नहीं हूँ, अपने पुरुषार्थ से तुमको ऐसा देवता बनना है, तुमको विक्रमाजीत बनना है, रूहानी बाप की। हाँ तो बाकी आशीर्वाद क्या करूं? अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरा अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से क्या करना है? बेहद का वैराग्य रखना है। अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, ये नशा रहे इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। वरदान रहन की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये तो है ही ऐसा, ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, तो जो ऐसा ये करते हैं उनको कहेंगे नॉलेजफुल। ये तो है ही ऐसा, ऐसा नहीं कहते वो। वे स्वयं को देखते हैं और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। कैसे आएगी रहम की दृष्टि? दया करके। हाँ, बेचारा ये परवश है, तो इसीलिए रहम की दृष्टि से घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते हैं। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। कौन है बेफिक्र बादशाह? सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि परमात्म चिंतन में रहते हैं, तो उनको कोई भी चिंता नहीं रह सकती है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में स्व उन्नति और सेवा की उन्नति, ये दोनों एक साथ कैसे होगा? स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में क्या होना चाहिए? एक ने कहा और दूसरे ने हां जी किया। तो स्वयं की उन्नति और सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हां जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता, देखते ना, दादियों की एकता, दीदी और दादी के लिए तो हम यही कहते थे, ये भले दो शरीर है लेकिन एक आत्मा है। क्योंकि जो दादी कहती थी दीदी भी वही कहती थी। ऐसे नहीं दादी से अलग को दीदी कहती थी या दीदी से अलग को दादी कहती थी। इसीलिए दो हंसों का जोड़ा बाबा कहते थे, यहाँ दो। तो जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार क्या है? वो एक थे, उसकी निशानी का यादगार क्या है? कौन एक थे? पांच पांडव। वो एक थे, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो वो पांचों ही पांडव एक थे। कभी एक दो से अलग मत ऐसे नहीं दी, सब ने एक साथ एक ही मत दी। तो पांच संगठन की निशानी का यादगार है पांच पांडव। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Any new double foreigners, new arrivals? Any double foreigners here? If there are any new arrivals, please complete your government form C and give it in the deposit office, and also deposit your valuables in the deposit office. Om Shanti. Chalo, Baba ko yaad karenge.